नमस्कार भारत, 19 जून बुधवार, मैं हूं मोहम्मद शाहिद। एक देश एक चुनाव पर प्रधानमंत्री मोदी की आज सर्वदलीय बैठक, लागू हो पाना कितना संभव?
ये पॉसिबल तब हो जाएगा जब इसके लिए नए रूल बनाए जाएंगे। ऐसे रूल बनाने से एक है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और दूसरा है फेडरलिज्म, ये दोनों तत्वों के वो खिलाफ होगा।
बिहार में बुखार और लू से सैकड़ों मौतें, लेकिन विपक्ष क्यों है चुप?
टोटल गवर्नमेंट का फेलियर है और उस फेलियर को ढकने के लिए विपक्ष क्या कर रहा है? ये नया ट्रेंड डेवलप हुआ है, ये विपक्ष की जवाबदेही है क्या?
और जानेंगे पाकिस्तान में पोलियो के खिलाफ जंग में क्या है मुश्किलें।
कई दफा उनको ये बिलीव नहीं होता, वो कहते हैं जी कि इसके अंदर शायद इसमें कोई हराम चीज शामिल है जिसकी वजह से वो रेजिस्ट करते हैं।
होगी खेल की खबरें और अखबारों की समीक्षा भी, लेकिन सबसे पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार सर्वप्रिया सांगवान से। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप अगले राष्ट्रपति चुनावों के लिए अपने प्रचार की औपचारिक शुरुआत फ्लोरिडा में एक रैली से करने जा रहे हैं। ट्रंप इस बार मजबूत अमरीकी अर्थव्यवस्था पर और प्रवासियों को लेकर अपने सख्त रवैये पर दांव खेल रहे हैं, जो शायद वोटरों के दिल से उनके अपरंपरागत शैली और ध्रुवीकरण नीतियों को लेकर चिंता की काट करेगा। फ्लोरिडा जाने से पहले ट्रंप ने दोहराया कि अमेरिका के अधिकारी अगले हफ्ते से बड़े पैमाने पर गैरकानूनी तौर पर रह रहे प्रवासियों की गिरफ्तारियां शुरू करेंगे। वहीं अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव पर उन्होंने पत्रकारों से कहा कि ईरान को लेकर वे पूरी तरह तैयार हैं।
We have a lot of things going with Iran. We're very prepared for Iran. We'll see what happens. But let me just say this.
हम ईरान के लिए पूरी तरह तैयार हैं। अगर आप देखें कि अब तक क्या हुआ है, उन्होंने क्या क्या किया है, मैं सिर्फ पिछले हफ्ते की बात नहीं कर रहा, मैं पिछले कई सालों की बात कर रहा हूँ। ईरान आतंकवादी देश है, हम देखेंगे कि क्या होता है, कह रहे थे डोनाल्ड ट्रंप। मैक्सिको का कहना है कि उसके गठित नए नेशनल गार्ड ने प्रवासियों के अमेरिका में घुसने से रोकने के लिए दक्षिणी सीमा पर तैनाती करनी शुरू कर दी है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा कि नेशनल गार्ड के 400 से ज्यादा सदस्यों को ग्वाटेमाला से लगी सीमा पर तैनात किया गया है। एक और तैनाती मैक्सिको लौटने वाले प्रवासियों से निपटने के लिए अमरीकी सीमा पर की जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने मैक्सिको पर टैरिफ लगाने की धमकी दी है अगर वो मध्य अमेरिका से आने वाले प्रवासियों को अमेरिका में घुसने से नहीं रोकता है तो। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने सीरिया के इदलिब प्रांत में स्थिति को स्थिर करने के लिए रूस और तुर्की से अपील की है। इस प्रांत में विद्रोहियों और सरकार समर्थक बलों के बीच लड़ाई की वजह से लाखों लोगों को भागने पर मजबूर कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र सहायता प्रमुख मार्क लोकाक ने सुरक्षा परिषद को बताया कि स्कूलों, बाजारों और अस्पतालों पर भी बमबारी की गई थी। रूस और सीरिया के राजदूतों ने इस बात से इनकार किया कि उनकी सेना ने जानबूझकर नागरिकों पर बमबारी की। एंटोनियो गुटरेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा,
आई एम डीपली कंसर्न्ड अबाउट द एस्केलेशन ऑफ द फाइटिंग इन इदलिब।
मैं इदलिब में लड़ाई बढ़ने को लेकर चिंतित हूं और स्थिति अब बहुत खतरनाक है क्योंकि इसमें अब बहुत तरह के कारक शामिल हो गए हैं। इस सब में फिर से आम लोग ही बुरी तरह पिस रहे हैं। जैसा कि मैंने बार बार कहा है कि सीरियाई संकट का कोई सैन्य समाधान नहीं है, ये शुरुआत में भी स्पष्ट था और आज 8 साल बाद भी स्पष्ट है कि समाधान राजनीतिक होना चाहिए। बोल रहे थे संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटरेस। कोलंबिया के पूर्व फार्क विद्रोहियों के नेता रोड्रिगो ने सरकार से आह्वान किया है कि पूर्व सेनानियों की हत्या को रोक दे। उन्होंने कोलंबिया के दक्षिणपंथी राष्ट्रपति इवान ड्यूक को एक खुले पत्र में कहा है कि हाल ही में हुई 2 फार्क सदस्यों की हत्या से पता चलता है कि सरकार उन्हें सुरक्षा देने में नाकाम है। एक पत्रकार की गोली मारकर हत्या हुई और दूसरी हत्या एक व्यक्ति की जो कोलंबिया में यूएन मिशन की मीटिंग से निकले थे। राष्ट्रपति ड्यूक ने हत्याओं की निंदा की और कहा कि हत्यारों को कानून का सामना करना होगा। फार्क का कहना है कि 2016 में सरकार के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद से संगठन के लगभग 160 पूर्व सेनानियों और उनके परिवार के सदस्यों को मार दिया गया है। कैलिफोर्निया में 3 बार आग लगने के लिए दोषी एक अमरीकी कंपनी ने नुकसान की भरपाई के लिए $1 अरब का भुगतान करने की बात मान ली है। पैसिफिक गैस और इलेक्ट्रिक नाम की कंपनी पर 14 स्थानीय सरकारी निकायों ने मुकदमा दायर किया था। उनका कहना था कि कंपनी की पावर लाइन की वजह से उत्तरी कैलिफोर्निया में आग लगी जिसमें 80 लोग मारे गए, हजारों घर नष्ट हो गए और पैराडाइज नाम का कस्बा तो पूरी तरह बर्बाद हो गया। बीबीसी समाचार।
नमस्कार स्वीकार करें मोहम्मद शाहिद का। ये बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत है। इस कार्यक्रम को रेडियो के साथ साथ आप हमारी वेबसाइट bbchindi.com और मोबाइल ऐप पर भी लाइव सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जिसमें वो एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री काफी समय से लोकसभा और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के चुनाव साथ कराने पर जोर देते रहे हैं, लेकिन इस मुद्दे पर राजनीतिक दलों की राय बटी हुई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि उनकी पार्टी टीएमसी बैठक में शामिल नहीं होगी। पूरी रिपोर्ट सुनिए बीबीसी संवाददाता गुरप्रीत सैनी से।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार कह चुके हैं कि अगर लोकसभा और सभी विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होंगे तो इससे पैसे और समय की बचत होगी। उनका कहना है कि बार बार चुनाव होने से प्रशासनिक काम पर भी असर पड़ता है। वो एक देश एक चुनाव की सोच की वकालत करते रहे हैं और आज पहली बार औपचारिक तौर पर सभी पार्टियों के साथ इस मसले पर विचार विमर्श करने जा रहे हैं। इसके लिए उन्होंने सभी पार्टियों के प्रमुखों को आमंत्रित किया है। केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने इस बारे में कहा,
इस देश में जो स्थिति है, हर महीने चुनाव होते हैं तो हर बार चुनाव होता है तो उसमें खर्चा होता है। मॉडल कोड कोडक लगने के कारण उसका दबाव पड़ता है, निर्णय नहीं हो पाते और हर चुनाव में प्रदेश में बाहर के पदाधिकारी पोस्टेड होते हैं चुनाव के निष्पक्षता के लिए, वो उनका इन्वॉल्वमेंट होता है तो उनके अपने प्रदेश में काम सफर होता है।
लेकिन राजनीतिक दलों की राय इस मसले पर बटी हुई है। पिछले साल जब लॉ कमीशन ने इस मसले पर राजनीतिक पार्टियों से सलाह मशविरा किया था तब समाजवादी पार्टी, तेलंगाना राष्ट्र समिति, शिरोमणि अकाली दल जैसी पार्टियों ने एक देश एक चुनाव की सोच का समर्थन किया था, जबकि डीएमके, तृणमूल कांग्रेस, सीपीआई, एआईयूडीएफ और गोवा फॉरवर्ड ने इस विचार का विरोध किया था। कांग्रेस ने कहा था कि वो अपना रुख तय करने से पहले बाकी विपक्षी पार्टियों से चर्चा करेगी। वहीं सीपीआईएम ने कहा था कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराना अलोकतांत्रिक और संघवाद के सिद्धांत के खिलाफ है। राजनीतिक विज्ञान के प्रोफेसर सुहास पलशिकर भी कुछ ऐसा ही कहते हैं।
ये पॉसिबल तब हो जाएगा जब इसके लिए नए रूल बनाए जाएंगे, लेकिन मेरा कहना यह है कि ऐसे रूल बनाने से हमारे देश के संविधान की जो दो तत्व है, एक है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और दूसरा है फेडरलिज्म, ये दोनों तत्वों के वो खिलाफ होगा। ये जो नए एक देश एक चुनाव का मामला चल रहा है उसका मतलब ये हो रहा है कि कभी भी अगर 5 साल के बाद चुनाव होने ही हैं उसके पहले हो नहीं पाएंगे। समझिए किसी विधानसभा में किसी पार्टी की मेजोरिटी खत्म हो गई तो आज हमारी सिस्टम यह है कि वहाँ इलेक्शन होते हैं, दोबारा चुनाव होते हैं 5 साल के पहले भी, लेकिन एक देश एक चुनाव सिस्टम में वैसा नहीं होगा।
आजादी के बाद देश में पहली बार 1951-52 में चुनाव हुए थे, तब लोकसभा चुनाव और सभी विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए गए थे। इसके बाद 1957, 1962 और 1967 में हुए चुनाव भी एक साथ कराए गए, लेकिन फिर ये सिलसिला टूट गया। लेकिन 1999 में विधि आयोग ने पहली बार अपनी रिपोर्ट में कहा कि लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हों। 2015 में कानून और न्याय मामलों की संसदीय समिति ने एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश की। मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक देश एक चुनाव की सोच का समर्थन करते रहे हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले कहा भी जा रहा था कि मोदी सरकार लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने के बारे में सोच सकती है। हालांकि ऐसा हुआ तो नहीं, लेकिन मोदी सरकार 2019 के लोकसभा चुनाव के साथ हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव कराना चाहती थी, लेकिन कहा जाता है कि यहां के मुख्यमंत्रियों, जो बीजेपी के ही मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने मना कर दिया और कहा कि हम अपनी विधानसभा भंग नहीं कर सकते, जबकि इन राज्यों के चुनाव में कुछ ही महीनों का अंतर था। 3 से 4 महीने में महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव होने वाले थे। ऐसे में सवाल ये पूछा जा रहा है कि जब बीजेपी अपने ही लोगों को नहीं मना सकी तो विपक्ष को कैसे मना पाएगी। गुरप्रीत सैनी, बीबीसी दिल्ली।
इन दिनों बिहार में मौतों का एक सिलसिला सा चला जा रहा है। एक तरफ एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम, जिसे चमकी बुखार कहा जा रहा है, उससे 100 से अधिक बच्चों की मौत हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ भीषण गर्मी और लू के प्रकोप से 200 से अधिक लोगों के मरने की खबर है। पानी के लिए भी राज्य में हाहाकार मचा हुआ है। सवाल केंद्र और राज्य सरकार पर तो उठे ही हैं, साथ में निशाने पर इन दिनों बिहार का राजनीति विपक्ष भी है, जो इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी खामोश सा नजर आ रहा है। आखिर ऐसा क्यों है, सुनिए बिहार से हमारे सहयोगी नीरज प्रियदर्शी की रिपोर्ट।
बिहार इस वक्त संकट के दौर से गुजर रहा है। इंसेफेलाइटिस से बच्चों की मौत का आंकड़ा 130 को पार कर गया है। लू और भीषण गर्मी की चपेट में आने से 250 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। रोज हो रही मौतों पर किसी का काबू नहीं दिख रहा। 38 में से 25 जिले पहले ही सूखाग्रस्त घोषित किए गए हैं। खरीफ की पिछली फसल भी बर्बाद हो गई है, जिससे किसानों की कमर पहले से टूटी है। अब पीने के पानी के लिए भी लोग सड़कों पर उतरने लगे हैं और कहने वाले तो यहाँ तक कहने लगे हैं कि बिहार अकाल की दहलीज पर खड़ा है। ऐसे वक्त में जब देश भर की निगाहें बिहार के मौजूदा संकट पर टिक गई हैं, केंद्र और राज्य सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं, सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट रहा है, लेकिन इन सब में बिहार का राजनीतिक विपक्ष नदारद दिखता है। इक्का दुक्का लोगों को वो भी सोशल मीडिया पर छोड़ दें तो ना ही कोई विपक्षी दल इसके विरोध में सड़क पर उतरा है, ना ही किसी विपक्षी नेता ने इसके लिए कोई मजबूत आवाज उठाई है। लोकसभा चुनाव से पहले खुद को जनता का गठबंधन कहने वाला विपक्षी महागठबंधन खामोश क्यों है? वरिष्ठ पत्रकार मणिकांत ठाकुर कहते हैं,
चुनाव परिणाम के बाद तो यही लगता है कि विपक्ष किसी सदमे में सोया हुआ है। उनमें कोई जैसे कि अभी जान ही नहीं लौट पाई है और सबसे निराशाजनक स्थिति तो मुख्य विपक्षी दल की है, जो तेजस्वी के नेतृत्व में लग रहा था कि राष्ट्रीय जनता दल मुख्य विपक्षी की भूमिका अच्छी तरह निभाएगा।
सवाल बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी के मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य से गायब हो जाने पर भी उठ रहे हैं, क्योंकि तेजस्वी आखिरी बार सार्वजनिक रूप से तब देखे गए थे जब महागठबंधन के सहयोगी दलों के नेताओं के साथ लोकसभा चुनाव में मिली हार पर समीक्षा बैठक की थी। लेकिन तेजस्वी यादव कहाँ हैं और क्यों गायब हैं, यह ना तो उनकी पार्टी राजद का कोई नेता बता रहा है, ना ही कोई कार्यकर्ता। तेजस्वी के राजनीतिक सलाहकार कहे जाने वाले संजय यादव ने बीबीसी को सिर्फ इतना बताया कि तेजस्वी व्यक्तिगत और पारिवारिक कामों में व्यस्त हैं। विपक्ष की इस खामोशी पर जब हमने सवाल बिहार कांग्रेस प्रवक्ता प्रेमचंद मिश्रा से किया तो उन्होंने कहा,
ये गवर्नमेंट का फेलियर है, टोटल गवर्नमेंट का फेलियर है, और उस फेलियर को ढकने के लिए विपक्ष क्या कर रहा है? ये नया ट्रेंड डेवलप हुआ है, ये विपक्ष की जवाबदेही है क्या? अस्पताल खोलना, दवाई मुहैया कराना, डॉक्टर रखना, ये क्या ये विपक्ष का काम है? मीडिया में बड़ा हिस्सा है जो मोदी भक्त है, सत्ता भक्त है, वो अपना ड्यूटी अब भूल गया है, मीडिया विपक्ष से सवाल करता है।
हालांकि पिछले एकाध दिनों में कुछ विपक्षी दलों और नेताओं ने जरूर सोशल मीडिया पर सक्रियता दिखाई है, मगर यह कहने में अब गुरेज नहीं रह गया है कि संसदीय लोकतंत्र में बिहार के राजनीतिक विपक्ष की अब तक की चुप्पी ने उसके अस्तित्व पर भी संकट पैदा कर दिया है। नीरज प्रियदर्शी, बीबीसी, पटना।
जैसा कि हमने सुना कि बिहार में गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, लू से मरने वालों की संख्या दिन ब दिन बढ़ रही है। हालात ये हैं कि सरकार ने लोगों को लू से बचाने के लिए गया में धारा 144 लगा दी है। डॉक्टर भी लू से बचने के लिए जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलने की सलाह दे रहे हैं। लू लगने पर क्या करें और क्या ना करें और इससे कैसे बचें, यही जानना चाहा बीबीसी संवाददाता अभिमन्यु कुमार साहा ने पटना के डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी से।
देखिए, सबसे पहले लू में दो बातें होती हैं। सबसे पहले लू में और ह्यूमिडिटी में पसीने से बहुत नमक और पानी की मात्रा निकल जाती है, जिससे व्यक्ति डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाता है और जो शरीर में लवण और एप्रोप्रिएट लवण की मात्रा और पानी की मात्रा रहनी चाहिए, जिससे कि सारे ऑर्गन्स को परफ्यूजन होता रहे, वो कम मिलने लगते हैं, किडनी शटडाउन होने लगता है, पेशाब कम बनता है, तो डिफरेंट ऑर्गन्स फेल होने की संभावनाएं रहती हैं। इसलिए लू में और हीट भी जो वेव चलता है उससे भी जो असर आते हैं ब्रेन के अंदर भी, और उससे फीवर भी हो जाता है, पर इन दोनों को मिलाकर के हाई फीवर और पानी और लवण की मात्रा कम होने से, ऑर्गन्स का परफ्यूजन कम होने से व्यक्ति शॉक में चला जाता है और उससे डेथ भी हो सकती है।
सर, इससे बचने के क्या तरीके हो सकते हैं?
इसके बचने के तरीके में सबसे पहला है कि गर्मी में और लू में बाहर न निकले, बिना खाली पेट तो कतई बाहर न निकले। दूसरी चीज है कि पानी की प्रचुर मात्रा में पानी और लवण का सेवन, इलेक्ट्रोलाइट का सेवन करते रहें। तीसरी चीज है कि जितना रसदार फल है उसको उसका सेवन करना उचित रहता है, जिससे कि लवण और इलेक्ट्रोलाइट्स और पानी की कमी शरीर में नहीं होती है। और चौथी चीज है कि छाता, चश्मा, कैप और सूती कपड़ा ही पहने, जो कि पसीने को एब्जॉर्ब कर ले और ज्यादा डायरेक्ट आप पर हीट का इफेक्ट आपकी आंखों पर या आपके शरीर पर न हो, इसका ध्यान रखें। पांचवी चीज कि लंबे समय तक बहुत लंबा धूप का एक्सपोजर न हो, अगर कहीं जाना है तो बीच में कहीं रुक गए जहाँ की छाया हो, कुछ खा लिए फिर खाली पेट न रहे, और इस तरह से अपने को मैनेज करके रखना। और जहाँ टेम्परेचर बहुत हाई है दोपहर में, उस समय बाहर नहीं निकलना चाहिए।
सर, ये कैसे पता लगाया जा सकता है कि लू लगने से व्यक्ति की स्थिति बहुत गंभीर हो गई है और एहतियात बरतना शुरू कर देना चाहिए?
देखिए, सबसे पहले यदि लू लगने के बाद किसी को फीवर आ रहा है, चक्कर आ रहा है, उल्टियां हो रही हैं, डायरिया हो रहा है, तो ये गंभीर स्थिति है। क्योंकि एक तरफ तो लू लगने और पसीने से पानी निकल जाने के कारण शरीर में ऐसे ही लवण और पानी की कमी है, और अगर उस पर से उल्टी या डायरिया हुआ तो वो बहुत तेजी से शॉक में पेशेंट को ले जा सकता है और पेशेंट की मृत्यु हो सकती है। तो वो एक चीज होती है जिसमें सतर्कता रखनी है। दूसरी होती है स्किन टर्जिडिटी। अब घर पर ही अगर कोई बच्चे को लू लगा है या डायरिया, डिसेंट्री हुई है, पानी की कमी है कि नहीं उसके शरीर में, वो जानने के लिए स्किन को आप अपने हाथ के जो चमड़ा होता है उसको दो उंगलियों से पकड़ करके उठाने की कोशिश करें और उसको देखें कि तुरंत वो अपने यथास्थान पर विद इन सेकंड्स तुरंत में चला जा रहा है कि नहीं। अगर तुरंत में चला जा रहा है तो पानी की अभी उतनी कमी नहीं हुई है, लेकिन अगर वो चमड़े से पकड़ करके हाथ के दोनों उंगलियों से हाथ का चमड़ा पकड़ के थोड़ा उठाए हैं और वो जाते समय बहुत समय लग रहा है उसको नॉर्मल स्किन को सामान्य स्थिति में आने में, तो इसका मतलब है कि आपके शरीर में पानी की काफी मात्रा कम गई है।
लू से कैसे बचे, अधिक जानकारी दे रहे थे डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी।
नमस्कार भारत, शॉर्ट वेव 49, 41 और 25 मीटर बैंड यानी 6070, 7290 और 11995 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज़ पर।
भारत के बाद अब रुख करते हैं पाकिस्तान का, जहां इस साल पोलियो के 21 मामले सामने आए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि 2014 के बाद से यहां पोलियो फिर बढ़ने लगा है और ये बढ़ोतरी बेहद गंभीर है। वहीं इसी दौरान पाकिस्तान में पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम में लगे 3 पोलियो कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई। सुनिए कराची से BBC संवाददाता शुमाइला जाफरी की एक खास रिपोर्ट।
सबसे अहम बात की तरफ मैं आऊंगी जो एक ठीक है ना, आप उनकी
सुबह सवेरे का वक्त है। लगभग 2 दर्जन खवातीन रावलपिंडी के करीब टेक्सिला के इलाके में एक सरकारी हेल्थ यूनिट में इकट्ठी हो रही हैं। अक्सर के चेहरों पर नकाब हैं। उन्होंने गले में शनाख्ती कार्ड पहन रखे हैं जिन पर उनके नाम के साथ पाकिस्तान पोलियो प्रोग्राम लिखा है। कमरे के बीच रोस्टम के पास खड़ी डॉक्टर उज्मा हयात खान उन्हें इस इलाके के 5,000 बच्चों को घर घर जाकर पोलियो वैक्सीन पिलाने से पहले ब्रीफ कर रही हैं। ये खवातीन पोलियो वर्कर्स डॉक्टर उज्मा को एक दिन पहले खुद के साथ पेश आने वाले वाकयात सुना रही हैं। अक्सरियत का कहना है कि उन लोगों ने भी पोलियो के कतरे पिलाने से इनकार किया जो पहले वैक्सीन देने में मदद कर रहे थे। एक वैक्सीनेटर का कहना था कि उन्हें सड़कों पर बुरा भला कहा जाता रहा कि वो बच्चों को जहर पिला रही हैं। डॉक्टर उज्मा वैक्सीनेटर्स को माँ बाप के एतराज और इनकार की सूरत में कतरे पिलाने पर इसरार न करने की ताकीद कर रही हैं।
ये शायद फैमिली प्लानिंग का कोई हिस्सा है कि ये जो है मतलब हमारे वक्फे के हिसाब से जो खानदान में वक्फा है बच्चों में उसके हवाले से हमें इनडायरेक्टली यानी दिया जा रहा है कि हमारी जो है नस्ल आगे नहीं बढ़ेगी। इसी तरह अभी कई दफ़ा उनको ये बिलीव नहीं होता, वो कहते हैं जी कि इसके अंदर कोई जैसे हराम हलाल है बींग मुस्लिम कम्युनिटी, तो वो उसमें आ जाता है कि शायद इसमें कोई हराम चीज शामिल है जिसकी वजह से वो रेजिस्ट करते हैं।
सैकड़ों किलोमीटर दूर कराची के बल्दिया टाउन इलाके की एक ऊंची नीची गली में इब्रार खान बेसाखियों के सहारे एहतियात से चलने की कोशिश कर रहे हैं। उनके हाथों में कुछ कागज हैं। कराची की गर्मी की शिद्दत से उनका पूरा चेहरा पसीने से चमक रहा है। इब्रार खान 3 साल की उम्र में पोलियो का शिकार हुए और अब वो पोलियो वॉलंटियर के तौर पर काम कर रहे हैं ताकि अपने इलाके से इस बीमारी का खात्मा कर सकें।
रिफ्यूजल्स जो हैं जैसे इसे कम होना चाहिए था, इतनी कैंपेन चल रही है, अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहे हैं, रिलीजियस लोगों को इन्वॉल्व कर लिया गया है, लेकिन फिर भी रिफ्यूजल्स जो हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रहे, आगे मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं।
पाकिस्तान में डोर टू डोर पोलियो मुहिम सन 2000 में शुरू हुई। तालिबान ने अपने जेरे कंट्रोल इलाकों में वैक्सीन पर पाबंदी लगा दी, ये कहकर कि वैक्सीन दुनिया से मुसलमानों की आबादी को कम करने की मगरबी साजिश है। 2011 में अमरीकी फौज के एक ऑपरेशन में अलकायदा के लीडर उसामा बिन लादेन की हलाकत के कुछ रोज बाद सूबा खैबर पख्तूनख्वा से एक पाकिस्तानी डॉक्टर शकील आफरीदी को गिरफ्तार किया गया, जिन पर अमरीकी इंटेलिजेंस इदारे CIA की मदद से उसामा को तलाश करने के लिए एक जाली वैक्सीनेशन मुहिम चलाने का इल्जाम लगा। इस वाकये के बाद वैक्सीन की मुखालफत में और इजाफा हुआ।
एक डॉक्टर हमने यूसी के लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे।
लेकिन इमरान खान समझते हैं कि सोशल मीडिया पर वैक्सीन के खिलाफ प्रोपेगेंडा से इस मुखालफत में और शिद्दत आ रही है।
प्रोपेगेंडा चल रहा है, फेसबुक हर बंदा चला रहा है, ट्विटर तकरीबन लोग चला रहे हैं, हमारे लोग कहाँ बैठे हुए हैं। एक किसी बंदे को इन्होंने ट्रेस करना हो तो ये देख लेते हैं कि हाँ ये यहाँ है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, तो ये वीडियो बन भी कहीं रही होगी और कहीं से अपलोड भी हो रही होगी।
पोलियो वैक्सीन के खिलाफ डिस इन्फॉर्मेशन 2012 से अब तक तकरीबन 100 फ्रंटलाइन पोलियो वर्कर्स की जान ले चुकी है।
फायरिंग की आवाज आ रही थी और मेरी अम्मी ने, उन्होंने मुझे कहा कि बाहर इतनी फायरिंग हो रही है। मैंने कहा अम्मी ये इलाका इस तरह का फायरिंग होती रहती है तो मसला नहीं है।
कराची के इलाके लांडी में पोलियो प्रोग्राम की एरिया इंचार्ज गुलनाज चिराजी की भाभी और भांजी 18 दिसंबर 2012 को गुलशने बोनेर में पोलियो मुहिम के दौरान एक हमले में मारी गईं। उस दिन 20 मिनट के वक्फे में पाकिस्तान के 4 इलाकों में 5 पोलियो वर्कर्स टारगेटेड हमलों में मारे गए थे। इस वाकये के बाद गुलनास के खानदान ने उन पर ये काम छोड़ने के लिए दबाव डाला, लेकिन गुलनास का कहना है कि इस सानहे ने उनके इरादों को और मजबूत किया।
वो तो चले गए मुझसे, इसी काम में गए, इसी फर्ज में गए, तो फिर मैंने कहा कि अब मैं इस काम को खुद से कभी भी नहीं छोड़ूंगी इंशाल्लाह ताला, जब तक भी मतलब मेरी यही कोशिश कि मैं इस काम को करूंगी। मेरी वजह से अगर एक बच्चे की जिसम से अल्लाह ताला इस बीमारी को दूर करता है, अगर वो उस पर अटैक नहीं करती है, मतलब है ही नहीं और उस पर अटैक भी नहीं करती, तो मैं अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करूंगी।
पाकिस्तान के 263,000 फ्रंटलाइन पोलियो वर्कर्स में अक्सरियत खवातीन की है। एक अंदाजे के मुताबिक हर पोलियो वैक्सीन मुहिम में तकरीबन 5 लाख बच्चे वैक्सीन नहीं ले पाते, लेकिन पाकिस्तान में पोलियो प्रोग्राम के फोकल पर्सन बाबर बिन अता समझते हैं कि ये तादाद कहीं ज्यादा है।
जब भी पोलियो वायरस आपकी एनवायरनमेंट में जिंदा रहेगा ना, जब भी जिंदा रहेगा, एक ही इमेज की तरफ, एक ही अमर की तरफ आपकी निशानदेही कर रहा है, और वो है कि आप इतनी बड़ी तादाद में बच्चों को हर मुहिम में, गौर से सुनिएगा, हर मुहिम में महरूम रख रहे हैं। अगर चाइना 3 कैंपेन्स में वायरस खत्म कर सकता है, बांग्लादेश खत्म कर सकता है, ईरान खत्म कर सकता है, तो आप सैकड़ों हजारों कैंपेन्स में क्यों नहीं खत्म कर पा रहे? इसलिए क्योंकि आपका डेटा आपको सच नहीं बता रहा, वो आपको कहता कुछ है, रियलिटी कुछ और है। वायरस की गटर में मौजूद जो जो साइंटिफिक एक बुनियादों पर हमें पता चलता है, वो मुंह बोलता सबूत है कि आप बच्चों को मिस कर रहे हैं।
अप्रैल में पोलियो मुहिम के दौरान पेशावर में वैक्सीन के खिलाफ फैलने वाली अफवाहों के बाद माँ बाप ने एक सरकारी अस्पताल में तोड़फोड़ की। उन्हें हेडमास्टर ने बताया था कि स्कूल आने वाली पोलियो टीम ने बच्चों को जबरदस्ती वैक्सीन दी, जिसके बाद बच्चों की हालत खराब हुई और कई बेहोश हो गए। बच्चों को फौरी तौर पर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां सभी को चेकअप के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया, क्योंकि वो सब बिल्कुल सेहतमंद थे। लेकिन इस वाकये के बाद पूरे मुल्क में वैक्सीन को लेकर खौफ पैदा हो गया। बाबर बिन अता कहते हैं कि अगर पोलियो मुहिम को कामयाब करवाना है तो हुकूमत को माँ बाप के सवालों का जवाब देना होगा और उन्हें वैक्सीन के बारे में मुतमईन करना होगा। शुमाया जाफरी, BBC न्यूज कराची।
और अब जान लेते हैं दिल्ली से छपने वाले अखबार आज क्या कुछ कह रहे हैं। अखबारों के साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सर्वप्रिया सांगवान।
शाहिद, रोज अखबारों में बिहार के मुजफ्फरपुर में जो इंसेफेलाइटिस का कहर बच्चों पर बरपा है, उसको लेकर रोज अपडेट आ रही है। संपादकीय भी छप रहे हैं और आज एक खबर है कि लोकसभा के सत्र के दूसरे दिन जो शपथ लेने की प्रक्रिया थी वो पूरी हो गई है और कई बड़े नेताओं ने दूसरे दिन शपथ ली। उसमें भाजपा के उत्तर प्रदेश से उन्नाव के सांसद साक्षी महाराज ने संस्कृत में शपथ ली और अंत में जय श्री राम मंदिर वहीं बनाएंगे बोले, और इस पर सदन में जय श्री राम की गूंज सुनाई दी। फिर AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी के शपथ लेने पहुंचने पर फिर से जय श्री राम के और भारत माता की जय वंदे मातरम के नारे लगने शुरू हुए। इसके अलावा जब TMC के सांसद शपथ लेने के लिए आए तो तब भी जय श्री राम के नारे लगे और उन्होंने भी फिर जय माँ काली और जय दुर्गा के नारे दिए।
और इसी तरह शफीकुर रहमान बर्ग जो सांसद हैं UP से आए हैं, उन्होंने कह दिया कि वंदे मातरम जो है वो इस्लाम के खिलाफ है। तो ये सारी चीज़ें चलती रही। और दूसरा सरप्रिया, इसको लेकर तंज भी कसा जा रहा है सोशल मीडिया पे, कहा गया कि संसद नहीं धर्म संसद है।
बिल्कुल, और ये इसकी जो लोग दैनिक भास्कर ने इसकी लगाई भी है इसकी हेडलाइन की, लोकसभा में गूंजा जय श्री राम अल्लाह अकबर और मंदिर वहीं बनाएंगे का नारा। तो तमाम मुद्दों के बीच ये रहा। दूसरा एक है कि पुलवामा हमले में जो कार देने वाला जो जैश का आतंकी था उसको मार गिराया गया है। इसके अलावा 15 दागी अफसरों को जबरन रिटायर किया गया है, जो कि CBIC के 15 वरिष्ठ अधिकारियों को वक्त से पहले ही उन्हें रिटायर कर दिया गया है। इन अफसरों पर भ्रष्टाचार, लापरवाही और लाल फीताशाही को बढ़ावा देने जैसे आरोप हैं। तो कहा जा रहा है कि ये भ्रष्टाचार पर एक और अटैक की तरह है एक चीज़। साथ ही जो मैं बात कर रही थी कि मुजफ्फरपुर में जिस तरह से इंसेफेलाइटिस के को लेकर बद इंतजामी अस्पतालों में, तो नीतीश कुमार जब वहाँ पर मिलने आए अस्पताल में तो उनके खिलाफ लोगों में काफ़ी रोष था उनके खिलाफ और काफ़ी नारेबाजी हुई।
ये भी कहा जा रहा था कि अब तक उन्होंने दौरा नहीं किया, डॉक्टर हर्षवर्धन जो स्वास्थ्य के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री वो पहले जा चुके थे
जी, और अब तक मतलब 100 से भी ज़्यादा बच्चों की मौत हो चुकी है वहाँ पर। इसके अलावा अयोध्या का एक आतंकी हमला था जिसके फैसला आ गया है, उसमें 4 दोषियों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। साथ ही अब जो सर्वदलीय एक बैठक प्रधानमंत्री ने बुलाई है उसको लेकर छपा है जनसत्ता में कि जो तृणमूल कांग्रेस के प्रमुख ममता बनर्जी हैं और TRS प्रमुख के चंद्रशेखर राव वे उसमें हिस्सा नहीं लेंगे।
जी, अखबारों की समीक्षा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सरप्रिया। अब रुख करते हैं खेल की दुनिया का। कल विश्व कप में मैनचेस्टर में खेले गए मैच में इंग्लैंड ने अफगानिस्तान को 150 रनों से हरा दिया। इंग्लैंड के कप्तान ओवेन मॉर्गन की 148 रन की शानदार पारी की बदौलत अफगानिस्तान को 398 रनों का लक्ष्य दिया, लेकिन अफगानिस्तान 50 ओवरों में 8 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 247 रन ही बना सकी। आइए अब सुनते हैं अन्य खेल की खबरें खेल समाचारों में।
खेल समाचारों के साथ मैं सूर्यांशी पांडे। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं विश्व कप की ओर, जहां पर क्रिकेट में आज मुकाबला होगा न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच। दक्षिण अफ्रीका की विश्व कप में शुरुआत तो अच्छी नहीं रही, 5 मुकाबलों में से 3 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा, तो वहीं एक मुकाबले में जीत दर्ज की, तो वहीं वेस्ट इंडीज के साथ हुआ मुकाबला बारिश के भेंट चढ़ गया, यानी कि उसका कोई नतीजा नहीं निकल पाया था। और न्यूजीलैंड की बात करें तो भारत के साथ होने वाले 13 जून के मुकाबले पर भी बादल छा गए थे और मुकाबला रद्द करना पड़ा था, लेकिन आंकड़ों के मामले में दक्षिण अफ्रीका से बेहतर स्थिति में है। 3 मुकाबलों में से 3 मुकाबले अपने नाम किए थे। ऐसे में ये मुकाबला दक्षिण अफ्रीका के लिए बेहद अहम हो जाता है। आज बर्मिंघम में भारतीय समय के अनुसार दोपहर को 3 बजे ये मुकाबला शुरू होगा। और फुटबॉल की तरफ अगर आपको लेकर जाएं तो ब्राजील में खेला जा रहा है 2019 कोपा अमेरिका कप। 14 जून से शुरू हुए इस मुकाबले में डिफेंडिंग चैंपियन चिली ने अपने पहले मैच में जोरदार शुरुआत की है। टीम ने एशियाई गेस्ट टीम जापान को एक तरफा मुकाबले में 4-0 से हरा दिया।
अब चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर सर्वप्रिया सांगवान से।
BBC समाचार। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप अगले राष्ट्रपति चुनावों के लिए अपने प्रचार की औपचारिक शुरुआत फ्लोरिडा में एक रैली से करने जा रहे हैं। मैक्सिको का कहना है कि उसके गठित नए नेशनल गार्ड ने प्रवासियों के अमेरिका में घुसने से रोकने के लिए दक्षिणी सीमा पर तैनाती करनी शुरू कर दी है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने सीरिया के इदलिब प्रांत में स्थिति को स्थिर करने के लिए रूस और तुर्की से अपील की है। कोलंबिया के पूर्व फार्क विद्रोहियों के नेता रोड्रिगो ने सरकार से आह्वान किया है कि पूर्व सेनानियों की हत्या को रोक दें। उन्होंने कोलंबिया के दक्षिणपंथी राष्ट्रपति इवान ड्यूक को एक खुले पत्र में कहा है कि हाल ही में हुई दो फार्क सदस्यों की हत्याओं से पता चलता है कि सरकार उन्हें सुरक्षा देने में नाकाम है। बीबीसी समाचार।
नमस्कार, भारत में आज इतना ही। स्टूडियो का तकनीकी पक्ष संभाला तिलक राज भाटिया ने। आपसे अगली मुलाकात शाम 7:30 बजे दिन भर में होगी। तब तक ताज़ा खबरों के लिए आएं हमारी मल्टीमीडिया वेबसाइट bbchindi.com पर। मोहम्मद शाहिद को सभी साथियों के साथ दें अनुमति। नमस्कार।